थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया।
मित्र प्रभुष्य के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही आत्मिक बातों को सीखेंगे। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी आज के इस दिन के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, इस जीवन दान के लिए ताकि हम इस धरती पर जीवित हैं। हमारी प्रार्थना प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए है जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। पिता परमेश्वर, हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। यदि कोई निराश है, चिंतित है, परेशान है, तनाव में है, बीमारी अवस्था में है, प्रत्येक की सहायता कीजिए, ताकि आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। इस समय हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 46 से अध्ययन आरंभ करेंगे। आज का विषय है परमेश्वर हमारा गढ़ है, सहस्त्र वर्षीय राज्य का गीत। मेरे प्रियो, ये तीन भजन पृथ्वी पर भावी राज्य की भविष्यवाणी के चित्र हैं। भजन 45 में पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए राजा के आगमन की चर्चा है। यह सहस्त्र वर्षीय राज्य है, तो ये तीन भजन हमारे सामने इस राज्य का प्रस्तुतीकरण करते हैं। यह भजन प्रधान बजाने वाले के लिए कोरह वंशियों का अलामोत की राग पर एक गीत है। यशायाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 14 पद में अलमा शब्द आया है। वहां इस प्रकार लिखा है, प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। अतः अलामोत का अर्थ है कुंवारियों के साथ, और यहाँ अभिप्राय है कुंवारियों की वाणी। यह भजन मुक्ति का भजन है और हमें मुक्ति के एक और महान गीत की ओर ले चलता है। जब वे लाल सागर पार कर रहे थे, अर्थात इसराइली, लिखा है कि उन्होंने मूसा का गीत गाया, परंतु गीत गाने में अगुवाई कौन कर रहा था? मैं नहीं सोचता कि मूसा मुझसे अच्छा संगीत अगुवा था। मैं तो संगीत के विषय किसी काम का नहीं हूं। मूसा और हारून की बहन नबिया मरियम, जिसे हम मरियम भी कहते हैं, अपने हाथ में डफ लेकर गीत गाने में अगुवाई कर रही थी और स्त्रियां उसके पीछे पीछे डफ बजाती हुई गा रही थी और नाच रही थी। मूसा और इसराइली वंशी गा रहे थे, तब मरियम उनके साथ यह टेक गाती है, यहोवा का यह गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुन्द्र में फेंक दिया है। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसके 21 पद में हम इसे पाते हैं। इस प्रकार उस अवसर पर गायन अगुआ और एकाकी गायक मरियम थी। वह एक महान विजय का उत्सव था। मेरे मित्रों, जब इसराइल के शेष भक्त भविष्य में बैरियों से मुक्त कराए जाएंगे, तब वे उस महान विजय का उत्सव मनाएंगे जो मसीह के द्वारा होगी। अतः इस भजन को इसके उचित परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है, वरन महत्वपूर्ण भी है। यह भजन 47, 48 और 45 के साथ का ही एक भाग है। इन भजनों को एक दूसरे से अलग करना वैसा ही है जैसा कि एक बालक ने झूठ की परिभाषा देते हुए दो परस्पर अप्रासंगिक पदों को जोड़कर कहा, झूठ परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, परंतु संकट के समय तत्कालिक सहायता है। हमें इस बालक पर हंसी आएगी, परंतु हम भी तो ऐसा ही करते हैं। जब हम इस भजन को इसके संदर्भ से अलग कर देते हैं, तब भजन संहिता 46 एक अति उत्तम उच्च स्त्री स्वर का एकांकी भजन है। यह दुख का नहीं, हालेलुया का भजन है, जिसमें हम परमेश्वर की समृद्धि, सुरक्षा और परम प्रधानता को देखते हैं। तो आइए हम देखें परमेश्वर की समृद्धि। भजन संहिता 46 उसके 1-3 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। यह एक अनुपम प्रतिज्ञा है। अब कोई इसे चुनौती देते हुए पूछे, आप कैसे जानेंगे कि यह सच है? बाइबल कहती है तो यह सच है, परंतु मेरे साथ यह शब्दों से अधिक व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने इसे सच पाया है। भजन संहिता 34 उसके 8 पद में लिखा है, परख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 17 पद में यीशु ने कहा, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान पाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। संकट के समय आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। विश्वासी संकट में परमेश्वर पर भरोसा रखने से चूक जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर संपन्नता के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने नहीं जाना है कि वह संपन्न है। हमें एक ऐसे परमेश्वर की आवश्यकता है जो हमें निराश न करे। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर संपन्न है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, पृथ्वी का उलट जाना तो मेरे विचार में असंभव सा ही है। क्या पृथ्वी कभी आपके पांव के नीचे से हटी है? क्या आप कभी अधर में लटके हैं? मनुष्य प्रायः यही सोचता है कि कष्ट उठाने वाला वही अकेला व्यक्ति है। कष्ट सब पर आते हैं, परंतु परमेश्वर के लोग संकट में परमेश्वर को संपन्न मानते हैं। भजन संहिता 46 मार्टिन लूथर का मन भावन पद था। जब वह महान धर्म सुधारक गीत लिख रहा था, तब शायद उसके मन में यही भजन था। अतः उसने वह अंग्रेजी का गीत लिखा, हमारा परमेश्वर दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा बल और संकट में उपलब्ध सहायक है। युगों से मनुष्यों ने इसे सत्य पाया है। परमेश्वर की सुरक्षा। आइए हम भजन संहिता 46 उसके 4 पद को पढ़ें। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। ध्यान दीजिए, कुछ टीकाकारों ने इस नदी को एक रूपक माना है, परंतु मैं इस नदी को वास्तविक मानता हूं, जो आज भी उसके प्रावधान और स्फूर्ति का प्रतीक है। यह नदी परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता 1 में लिखा है कि धर्मी जन बहते हुए जल के किनारे पर लगाया गया वृक्ष है। यह जल परमेश्वर का वचन है। धर्मशास्त्र यजकेल नबी की पुस्तक 47 अध्याय में कहता है कि एक नदी परमेश्वर के भवन से बहती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय उसके 1 पद में यूहन्ना कहता है, उसने मुझे विल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलता है। भजन संहिता 46 के 5-7 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। यह महाक्लेश के कंपन की ओर निहारती है, उस अंधकार की ओर जब बैरी बाढ़ के समान आया। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। अब शेष रहे विश्वासी जो मुक्ति पाए थे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मित्रों, हम आगे देखते हैं परमेश्वर की परम प्रधानता। भजन संहिता 46 उसके 8-9 पद में लिखा है, आओ यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। मसीहा न्याय करने पृथ्वी पर आया है। वह युद्धों को रोक देता है, धनुष तोड़ देता है, भालों को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। यह चित्रण पृथ्वी पर अंतिम दिनों का है, जब दानियल अपनी पुस्तक में 2 अध्याय उसके 45 पर कहता है, पत्थर पृथ्वी पर विनाशक वार करता है। लिखा है कि हर्मागिदोन के युद्ध के पश्चात लाशें और अस्त्र शस्त्रों के अंश सर्वत्र पड़े मिलेंगे। परमेश्वर के काम मनुष्यों को परमेश्वर का बोध करवाएं, यह आवश्यक है। पृथ्वी पर शांति की भविष्यवाणी है, एक धन्य सत्य है, राजा आकर पृथ्वी से सब अधर्मियों को नष्ट करेगा। भजन संहिता 46 के 10-11 पद में हम पढ़ते हैं, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ, पृथ्वी पर यह परमेश्वर का उद्देश्य है। लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। इस धन्य सत्य को जानकर हम संकट काल में शांति पाते हैं। आज आंधियां चल रही हैं, हम एक दुष्ट संसार में वास करते हैं, भयानक परिवर्तन आ रहे हैं, प्रकृति में भी कंपन हो रहे हैं। वह कहता है कि हम संकट में शांति रखें। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु आंधी में नाव के भीतर सो रहा था। जब उसकी नींद भंग की गई तब उसे आंधी शांत करने की अपेक्षा शिष्यों को शांत करने में अधिक परेशानी हुई। हम में से अधिकांश जन उन शिष्यों की नाई हैं। हम नहीं जानते कि उसकी उपस्थिति में धीरज के साथ प्रतीक्षा करना क्या होता है। यह भजन भविष्य में एक महान आशीष का कारण होगा, परंतु यह भजन आज के ईश्वर भक्तों के लिए शांति और आशीष का कारण है। मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 46 समाप्त होता है और अब हम भजन 47 में देखते हैं, जिसका विषय है सहस्त्र वर्ष के राज्य में स्तुति आराधना। यह सहस्त्र वर्ष के राज्य की भविष्यवाणी का दूसरा भजन है। प्रभु यीशु दूसरी बार आएगा तो 1000 वर्ष तक राज्य करेगा। यह प्रभु यीशु जो अब राजा है उसकी स्तुति आराधना है। भजन संहिता 47 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारे पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारे पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। देखिए, प्रभु यीशु सारी पृथ्वी पर राज्य कर रहा है और इस कारण उसकी स्तुति और आराधना की जाती है। मेरे मित्रों, इससे पूर्व कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर राज्य करे, उसे विद्रोह का पूर्ण रूपेण दमन करना होगा, परमेश्वर के विरुद्ध घमंड, हठ और अन्याय का अंत करना होगा। भजन संहिता 46 में हम उसके न्याय हेतु आगमन का उल्लास देखते रहे हैं और अब भजन 47 में उसके राज्य की स्थापना और उसके शासन को देखेंगे। भजन संहिता 47 उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता है और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। यही एक सही समय है कि हम विश्व के आनंद के गीत को गाएं, खुश हो खुदावंद आया है, उसको कबूल कर ले। मेरे मित्रों, आप देख सकते हैं कि यह प्रभु यीशु के जन्म का स्तुति गान नहीं है, यह उसके दूसरे आगमन का वर्णन है। उसके आने पर पृथ्वी आनंद से भरपूर हो जाएगी। ताली बजाओ, परमेश्वर के लिए जय जयकार की पुकार करो। एक बार मैं किसी कलीसिया में प्रचार करने के लिए गया। वहां आराधक तालियां बजाते थे और ऊंचे स्वर में गाते थे। मुझसे किसी ने पूछा कि क्या उनकी ऊंची आवाज से मुझे विघ्न नहीं पहुंचता है। मैंने उत्तर दिया, नहीं, मुझे तो उससे बहुत सहायता मिली क्योंकि वे मेरे साथ ही बने हुए थे। मेरे विचार में आज श्रद्धा का जो विचार है वह वास्तव में मृतक अवस्था में है। कब्रिस्तान में अपार श्रद्धा का वातावरण होता है, वहां कोई किसी को नहीं छेड़ता है। मेरे विचार में हमारी कलीसिया में जीवन होना चाहिए। भजन संहिता 47 उसके 5 से 9 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ हमारे महाराजा का भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारे पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है, वह तो शिरोमणि है। मैं आपको इस गद्यांश का डॉक्टर गैबलिन का अनुवाद सुनाता हूँ। परमेश्वर जय के नारे के साथ और यहोवा तुरही की आवाज के साथ ऊंचा उठा है। अपने परमेश्वर के लिए भजन गाओ, अपने राजा के लिए भजन गाओ, गुणानुवाद करो, क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण पृथ्वी पर राजा है। बुद्धि के भजन गाओ, परमेश्वर सब जातियों पर राज करता है। परमेश्वर अपनी पवित्रता के सिंहासन पर विराजमान है। मनुष्य जाति में से इच्छाधारी अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा के साथ एकत्र हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी का सुरक्षा कवच परमेश्वर का है, वह परम पूजनीय है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया है, अर्थात वह जय घोष के साथ ऊपर उठा है। ऊपर उठने का अर्थ है कि पहले वह नीचे था। जी हाँ, 2012 वर्ष पूर्व वह इस पृथ्वी पर आया था, बेतलहम में उसने जन्म लिया था और पृथ्वी पर अपना उद्धार कार्य को पूरा करके वह फिर स्वर्ग में चला गया था। मेरे विचार में भजन संहिता 24 इसी की चर्चा करता है, परंतु इस भजन में किसी और आरोहण की चर्चा की जा रही है। जब प्रभु यीशु दूसरी बार इस पृथ्वी पर आएगा, तब वह अपना राज्य यहां स्थापित करेगा और नए यरूशलेम में उसका आना जाना होता रहेगा। मेरे विचार में नए यरूशलेम और इस पृथ्वी के मध्य एक ऐसा मार्ग होगा जहां किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं होगी। आप स्वच्छंद यात्रा करेंगे। सहस्त्र वर्षीय राज्य में प्रभु यीशु समय समय पर उस मार्ग से आगमन करेगा और पृथ्वी पर अपने प्रत्यक्ष महिमा को प्रकट करेगा। यह भजन कैसा महिमामय और अद्भुत भविष्य को प्रकट करता है। मित्रों, यहां पर भजन संहिता 47 समाप्त होता है और अब 48 में हम देखेंगे, विषय है पृथ्वी पर प्रभु यीशु की निर्णायक विजय। जी हाँ, 3 सहस्त्र वर्षीय भजनों के समूह का यह अंतिम भजन है। इसमें प्रभु यीशु की निर्णायक विजय का उल्लास है। भजन संहिता 48 उसके 1-3 पद में लिखा है, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। मैं यहां भी डॉक्टर गबलियन का अनुवाद सुनाना चाहता हूं। यहोवा महान है और परमेश्वर के नगर में उसके पवित्र पर्वत पर परम स्तुति के योग्य है। सियोन पर्वत ऊंचाइयों में अति सुंदर, पृथ्वी का आनंद उत्तरी दिशा में, राजाधिराज का नगर है। सियोन पर्वत तो सियोन पर्वत ही है, परंतु परमेश्वर का नगर यरूशलेम है। अब यहां एक रोचक अभिव्यक्ति है, उत्तरी सिरे पर। यह संभवतः पृथ्वी पर उतरने और स्वर्ग में चढ़ने का मार्ग है। यशाया की भविष्यवाणी में एक विचित्र अभिव्यक्ति है जो उत्तरी सिरे के संबंध में शैतान का उल्लेख करती है। यशाया नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसके 13-14 पद में लिखा है, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अंग्रेजी अनुवाद में एक वाक्यांश और जुड़ा है, उत्तरी सिरे से मैं मेघों में से ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। उत्तरी दिशा में संभवतः स्वर्ग का मार्ग है। शैतान परमेश्वर का तख्ता पलटना चाहता था। यह अंतिम निर्णायक युद्ध होगा जिसे हम भजन संहिता 48 उसके 4-5 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ आए, उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। एक बार फिर गबलिन के अनुवाद को आपको बताना चाहूंगा कि देखो सब राजा संगठित होकर आगे बढ़े, उन्होंने देखा और आश्चर्य करने लगे, वे भयभीत हो गए, वे भागने लगे, वे कांपने लगे और उन्हें जच्चा की सी पीड़ा होने लगी। तूने पूर्वी वायु के द्वारा तार्शीश के जहाजों को तोड़ दिया। मेरे विचार में यह हजार वर्षीय राज्य के बाद का उल्लेख है जब शैतान को कुछ समय के लिए मुक्त किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 20 अध्याय उसके 7-9 पद में हम पढ़ते हैं, जब हजार वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालों के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। भजन संहिता 48 के 8 पद में लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है, परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। उन्होंने अपने भविष्यद्वक्ताओं से सुना था और पढ़ा भी था, परंतु अब वे इसे पूरा होता हुआ देख रहे हैं। यह वह मुक्ति है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने शताब्दियों पूर्व उनसे की थी और अंत में यह प्रतिज्ञा पूरी हुई है। भजन संहिता 48 उसके 9 और 10 पद में हम देखते हैं, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। अपने सहस्त्र वर्षीय राज्य में प्रजा प्रभु की आराधना करेगी और उसकी प्रेममय दया पर विचार करेगी। जी हाँ, भजन का अंत महान हालेलुया गान से होता है। आइए हम पढ़ें भजन संहिता 48 उसके 11 से 14 पद में, तेरे न्याय के कामों के कारण सियोन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सियोन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी सहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाले पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। वे बड़े आनंद के साथ यरूशलेम में विचरण करेंगे, उसके प्रत्येक भाग को देखेंगे और अपने जीवन के परमेश्वर एवं मार्गदर्शक की स्तुति करेंगे। यह कैसा ही महान गुणानुवाद होगा। मेरे प्रिय मित्र, क्या आज हम इन सब बातों के लिए तैयार हैं? आइए आज हम भी उस महान परमेश्वर की प्रतीक्षा करें जो आने वाला है, जो शासन करने वाला है, ताकि हम भी उसके राज्य में उस आनंद को प्राप्त कर सकें। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह हमें पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह हमें पाक रूह से किया है। अब ना उदासी